आज बहुत ही विशेष उत्सव है, श्री वृंदावन सागर का आविर्भाव दिवस है। एक महीना पहले, 25-1 दिन पहले करीब उनका तिरुभाव तिथि भी हमने मनाया था, और ये व्यास देव जी के अवतार कहलाते हैं और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है श्री चैतन्य भागवत, उसकी रचना की थी। तो उनके बारे में संक्षिप्त में जितना भी संक्षिप्त का जितना भी चर्चा कर प्राप्त कर पाया मैं, वो करने का प्रयास करूंगा, और कुछ श्लोक श्रीमद् भागवतम से। तो पहले श्रीमद् भागवतम और फिर चैतन्य श्री वृंदावन ठाकुर के चरित्र के बारे में थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 6, देवताओं तथा असुरों द्वारा संधि की घोषणा, श्लोक संख्या 38 बोर्ड पे लिखा है, और कल संडे को 32 लिया गया था, उसके बाद के 33, 34, 35, 36, 37 में तात्पर्य नहीं है। तो मैं एक बार उनका अनुवाद पढ़ देता हूँ और फिर इस श्लोक को पढ़ेंगे। ततस्ते मंदर गिरिम ओजसा उत्पाट्य दुर्मदः नदन्तौ दधिं निन्यु शक्तः परिगभाः वः। तत्पश्चात देवताओं तथा अत्यंत शक्तिशाली एवं लंबी लंबी बलशाली भुजाओं वाले असुरों ने अत्यंत बलपूर्वक मंदर पर्वत को उखाड़ा और जोरों से निनाद करते हुए वे उसे शीर सागर की ओर ले चले। तो अभी सब देवताओं और असुरों ने भगवान के कहने पे संधि कर लिया है, और बलिभारा से जाके सब देवता लोग मिले और दोनों एग्री हो गए कि हम मिलके समुद्र मंथन करेंगे, और समुद्र जो है वो तो अब मथनी की तरह मंदर पर्वत को इस्तेमाल करना था। तो वो इतने बड़े सोने के मंदर पर्वत को उठा करके जोर से, ऐसे कोई वजन उठाते तो जोर लगा के हईश ऐसे बोलते हैं, तो ऐसे जोर से जो है बोलते हुए वो उसे क्षीर सागर की ओर लेके जा रहे हैं। विशाल पर्वत को दूर तक उठाकर ले जाने के कारण राजा इंद्र, महाराज बलि तथा अन्य सारे देवता एवं असुर थक गए। पर्वत को ले जाने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने उसे रास्ते में छोड़ दिया। अब इतनी दूर तक वेट उठा के लेके जा रहे हैं तो बहुत थक गए, तो रास्ते में छोड़ दिया। और यह पर्वत जो मंदर के नाम से विख्यात था, अत्यंत भारी था तथा सोने का था, वही गिर पड़ा, और इससे अनेक देवता तथा असुर कुचले गए। तात्पर्य में एक लाइन प्रभुपाद लिख रहे हैं और सेम लाइन विष्णुचरण ठाकुर ने भी लिखा है। स्वभाव से सोना पत्थर से भारी होता है, क्योंकि मंदर पर्वत सोने का बना था अतएव वह पत्थर से भारी था, फलतः देवता तथा असुर उसे क्षीर सागर तक ठीक से नहीं लेके जा सके। तो क्योंकि सोना भारी होता है, उसका डेंसिटी ज्यादा होता है पत्थर के मुकाबले, तो बहुत ज्यादा भारी था, तो गिर पड़ा, और गिरने से हुआ क्या, बहुत सारे असुर और देवता सब उसके नीचे आ गए और उनका पापड़ बन गया, बेसिकली कुचले गए वो। देवता तथा असुर हताश तथा विशुद्ध थे, और उनकी भुजाएं, जांघें तथा कंधे टूट गए थे, अतएव गरुड़ की पीठ पर सवार सर्वज्ञ भगवान वहां पर प्रकट हुए। तो अब उनका तो पहला स्टेप क्षीर सागर की ओर लेके जाने वाले थे मथनी के लिए, वही उनसे उठाया नहीं जा रहा है, तो नेचुरली फ्रस्ट्रेशन तो हो जाएगा उनको, तो बहुत डिप्रेस हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, और इंजर्ड भी हो गए थे सबके सब, है कि नहीं, हाथ टूट गया किसी का, पैर टूट गया, तो कोई शरीर ही छोड़ दिया किसी ने, तो किसी के कंधे टूट गए, मल्टीपल फ्रैक्चर्स, तो सब परेशान हो गए थे। तो वहां पे भगवान आए, भगवान सबको जानते हैं, गरुड़ की पीठ पर बैठ के भगवान वहां पे प्रकट हुए। यहां यह देखकर कि अधिकांश दानव तथा देवता पर्वत के गिरने से कुचले गए हैं, भगवान ने उन सब पर, मतलब पर्वत से कभी लैंडस्लाइड होता तो लोग मर जाते हैं, यहां तो पूरा पर्वत ही गिर गया, पर्वत से कुछ चट्टाने गिरी, कुछ पत्थर गिरी, ये पूरा पर्वत ही गिर गया। तो फिर ऐसा देख के कि सब कुचले गए हैं, भगवान ने उन सब पर अपनी दृष्टि दौड़ाई और उन्हें जीवित कर दिया। तो भगवान की दृष्टि मात्र से जो है सब पुनर्जीवित हो गए। इस प्रकार वे शोक से रहित हो गए और उनके शरीरों के घाव भी जाते रहे। तो भगवान की कृपा दृष्टि है, किसी भी प्लास्टर, किसी भी मेडिसिन से महान शक्तिशाली है। तो वो सब जीवित भी हो गए और शोक रहित भी हो गए और हेल एंड हेल्दी, बिल्कुल जो है उनके सारे वूंड्स थे वो ठीक हो गए। फिर आज का श्लोक जो है, तो भगवान ने आगे क्या किया, चलो उनको ठीक तो कर दिया, बोले छोड़ दो शीर सागर की मथना प्रयास, छोड़ दो, पहला स्टेप नहीं कर पाए, आपके बस की क्या है, या नहीं कर पाओगे। भगवान भी डिस्करेज कर सकते थे, बोले बहुत मुश्किल टास्क है, लेकिन भगवान ने क्या किया, गिरिम चारोप्य गरुड़े हस्ते एक नलीलया आरुह प्रयया वब्धिम सुरा सुर गणैर्वृतः। तो भगवान ने क्या किया, ये इसका तो बहुत सिंपल ही है, आराम से कोई भी समझ सकता है। गिरिम मतलब पर्वत और आरोप्य मतलब उठा के रख के स्थापित करके, और गरुड़े गरुड़ के ऊपर, और हस्तेन एकेन मतलब एक हाथ से, और लीलया लीला के रूप में बड़ी आसानी से बिल्कुल, और आरुह जो है तो गरुड़ पे फिर भगवान भी बैठ गए, पर्वत को रख दिया, पहले उठाया एक हाथ से पर्वत को रख दिया, फिर आरुह खुद भी बैठ गए, और प्रयया प्रयऊ अर्थात चले 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 गए, कहां को चले गए, अब्धिम भवाब्धिम, अब्धिम मतलब सागर, शीर सागर को, सुरा सुरा गणैर वृतः, वृतः मतलब घिरे हुए और सुर असुरों के द्वारा। तो जो भगवान ने क्या किया, गिरिम चारों पे गरुड़े, गिर उस पर्वत को गरुड़ की पीठ पे एक हाथ से आसानी से उठा करके रख दिया और स्वयं चढ़े और कहां चले, असुरों और सुरों के देवताओं के साथ में शीर सागर की ओर चल पड़े। तो शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस प्रकार से है, गिरिम पर्वत को च भी आरोप्य रख कर गरुड़े गरुड़ की पीठ पर हस्तेना हाथ से एकेना एक लीलया अपनी लीला के रूप में आसानी से आरुह चढ़कर प्रयय चले गए अब्धिम शिर सागर सुरासुर गण ही देवताओं तथा असुरों द्वारा वृतः घिरे हुए। फिर भगवान ने पर्वत को अत्यंत सरलता पूर्वक एक हाथ से उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख दिया, तो स्वयं वे भी गरुड़ पर सवार हुए और देवताओं तथा असुरों से घिरे हुए शीर सागर चले गए। तात्पर्य जीवन ग्रेसी भक्ति स्वामी प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। यहां पर सर्वोपरि भगवान के सर्वशक्तिमान होने का प्रमाण प्राप्त होता है। जीवों की दो श्रेणियां हैं, असुर तथा देवता, किंतु भगवान इन दोनों के ऊपर हैं। असुरगण सृष्टि के अवसरवाद सिद्धांत में विश्वास करते हैं, किंतु देवता भगवान के हाथों से बनी सृष्टि पर विश्वास करते हैं। अवसरवाद सिद्धांत मतलब कि सृष्टि हैज कम बाय चांस, जो क्रिएशन हैज डन बाय चांस, कि अचानक से बिना किसी कारण अकारण अवसर से जो है ये सृष्टि की रचना हो गई है। यहां पर भगवान की सर्वशक्तिमत्ता सिद्ध हो जाती है, क्योंकि उन्होंने मंदर पर्वत असुरों तथा देवताओं को मात्र एक ही हाथ से उठाकर गरुड़ की पीठ पर रखा और सबको शीर सागर ले आए। देवता तथा भक्त इस घटना को यह जानते हुए कि भगवान किसी भी वस्तु को चाहे वह कितनी भी भारी क्यों न हो उठा सकते हैं, तुरंत स्वीकार कर लेंगे। किंतु दानव इस घटना को सुनकर यही कहेंगे कि यह पौराणिक है, यद्यपि वे भी देवताओं के साथ भगवान द्वारा ले जाए गए थे, किंतु क्या सर्वशक्तिमान भगवान के लिए पर्वत उठाना कठिन है, क्योंकि उन्होंने लाखों मंदर पर्वतों से युक्त असंख्य लोगों को तैरा रखा है, तो फिर वे उनमें से एक पर्वत को अपने हाथ से क्यों नहीं उठा सकते हैं। यह पौराणिक कथा नहीं है, अपितु विश्वास करने वालों तथा अश्रद्धालुओं में यही अंतर है कि देवता वैदिक साहित्य में वर्णित घटनाओं को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु दानव केवल विवाद करते हैं और कहते हैं कि ये ऐतिहासिक घटनाएं मात्र पौराणिक कथाएं हैं। असुरगण यही व्याख्या करना श्रेष्ठ समझते हैं कि इस जगत की सारी घटनाएं अकस्मात से होती हैं, किंतु भक्तगण अथवा देवगण किसी भी घटना को अवसर जनित नहीं मानते, प्रत्युत वे जानते हैं कि प्रत्येक घटना भगवान की योजना के अनुसार घटती है। देवों तथा दानवों के बीच यही अंतर है। ओम अज्ञान अतिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। एक बार एक व्यक्ति जो है गृहस्थ व्यक्ति था, भक्त था, भगवान का बड़ा विश्वास करता था, पूजा करता था। तो भगवान को भोग लगाने के बाद में और बाहर घर के बाहर जाके आवाज लगाता था, यदि कोई भूखा है, किसी को भूख लगी है, किसी को भोजन प्राप्त करना है तो आ जाइए। तो ऐसे रोज का उसका नियम था। तो उसने एक दिन एक व्यक्ति आया तो उसको पूरा भोजन खिलाया, उसने प्रसाद खिलाया और बाद में पूछा कि भगवान के बारे में क्या, भगवान आपकी भगवान के बारे में क्या राय है, भगवान कौन है, ऐसे चर्चा थोड़ा करने लगा। तो बोला, देखो मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता, मैं नास्तिक हूं। तो ऐसा कह के उस भक्त की भावनाओं को बड़ा ठेस पहुंचा कि अरे मैंने नास्तिक व्यक्ति को आज भोजन खिला दिया, मेरे से बड़ा अपराध हो गया। तो वो नास्तिक तो चला गया, लेकिन ये व्यक्ति विग्रहों के सामने आया और बोला, रोने लगा बड़ा जोर जोर से, बोला भगवान आज मेरे से बड़ा गलती हो गया है, नास्तिक व्यक्ति को मैंने जो है भोजन खिलाया है, तो मुझे क्षमा करें। तो तभी विग्रहों से आवाज आती है, बोले तुमने एक दिन एक नास्तिक व्यक्ति को खिलाया है, मैं उन सारे नास्तिकों को रोज खिलाता हूं जो है। तो भगवान बोल रहे हैं कि वो सारे नास्तिकों को, तो यही श्लोक में बता रहे हैं कि जो नास्तिक लोग हैं, जो दानव हैं, मूढ़ लोग हैं, वो भगवान की सृष्टि में विश्वास नहीं करते, वो केवल वाद विवाद में उनकी रुचि रहती है, वो केवल भगवान की सृष्टि को चैलेंज करेंगे, उल्टी सीधी फिलोसॉफीज देंगे जो है। देवता तथा भक्त यह जान सॉरी प्रॉपर राइटिंग है कि किंतु दानव देवता जो है वैदिक साहित्य में वर्णित घटनाओं को सत्य रूप में स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जो दानव होते हैं वो केवल वाद विवाद करते हैं। तो जो है ये श्लोक, जो लीला तो चल रही है, बहुत सारी शिक्षाएं हैं और बहुत रोमांचकारी शिक्षा अभी आएंगी भी। और यहाँ पे जो प्रभुपाद तात्पर्य लिख रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान ने एक हाथ से इतने बड़े बंदर पर्वत को उठाया, गरुड़ की पीठ पे रखा, और जो है प्रॉपर तात्पर्य में लिख रहे हैं कि सभी देवता और दानवों को उठाया, उनको भी गरुड़ के पीठ पे रखा, और भगवान भी गरुड़ की पीठ पे बैठे और सबको लेके चले गए क्षीर सागर की ओर। तो लेकिन फिर भी दानवों को भगवान, दानवों के सामने भगवान ने मंदा पर्वत उठाया, दानवों को भी उठाया, लेकिन दानव फिर भी बोलेंगे कि नहीं ये तो पौराणिक घटना है, ये तो ऐसे ही कुछ चमत्कार है, हम भी कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, बस थोड़ा मिस्टिक पावर है। कुछ कुछ फिलोसफी जरूर दे देंगे, लेकिन वो भगवान में विश्वास नहीं करेंगे कि हाँ। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये जो एक लीला है ये भगवान की सर्वशक्तिमता, लॉर्ड्स ओमनी पोटेंसी, उसका प्रूफ है। और जब इसका पहला पर्व था गिरिम, तो जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को तुरंत ध्यान आया कि भगवान कृष्ण ने कौन से पर्वत को उठाया था, गोवर्धन को। वो तो एक हाथ से भी नहीं, एक उंगली से ही उठा लिया उसको, और 7 दिन गरुड़ पे भी नहीं बैठाया, 7 दिन 7 रात खड़े रहे वृंदावन के अंदर इंद्र के आक्रमण से सब ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए। तो भगवान जो है जगह जगह, ऐसा नहीं भगवान के जिम में गए थे, रोज प्रैक्टिस करते थे वेट लिफ्टिंग की, या जो है अभ्यास करते थे कि 10 किलो 20 किलो 40 किलो ऐसे भगवान के लिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ लॉजिक दे रहे हैं कि भगवान ने तो ऐसे असंख्य जो ब्रह्मा जो प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, असंख्य लोकों पर कितने सारे पर्वत होंगे, ये सब इस ब्रह्मांड में तैर रहे हैं, जैसे रुई के कॉटन स्वैब, जैसे रुई हो अगर वो तैर रही हो तो ऐसे वो तैर रहे हैं। तो जब भगवान ने उनको ठहरा रखा है तो उसमें से किसी एक लोक के छोटे से पर्वत को उठाने में क्या दिक्कत है? और अधिकांश यहाँ पे भक्त हैं, पुराने भक्त हैं, तो हमको विश्वास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इमेजिन कीजिए कि कोई नया व्यक्ति आए, और मान लीजिए 7 डे सेशन में, 4 डे सेशन में, किसी नए प्रोग्राम में आया, पहले दिन आपने बताया कि देखो दूध का सागर है, दानव है, देवता है, उसके बाद में ऐसे देवताओं को श्राप मिल गया, दानवों ने आक्रमण कर दिया, उनके बेचारे घर से विहीन हो गए, फिर क्षीर सागर में भगवान के पास गए, लेटे हुए भगवान के पास में प्रार्थना की, फिर उनको आवाज आया है और कि आप सब ऐसे, पूरा पॉलिटिक्स भगवान सिखा रहे हैं यहाँ पे, है ना। और फिर देवतागण गए, सोने का पर्वत उसको उठा के सब लेके आ रहे हैं, फिर चूर हो गए, फिर एक हीरो आया ऊपर से, जैसे मूवी में होता है ना, एक पक्षी पे बैठ के वो भी, है ना, और पूरे पर्वत को उठाया उसने। तो अगर ये कोई नया व्यक्ति सुने तो स्वाभाविक उसको लगेगा ये लोग सुबह सुबह क्यों 1 घंटे तक मंडलबाजी करते रहते हैं, है कि नहीं? किसी को भी लग सकता है कि यहाँ पे कोई कार्टून मूवी चल रही है, किसी को लग सकता है ऐसा, है कि हृदय व्यक्ति को जिसको इतना विश्वास ना, भारत में तो फिर भी थोड़ा विश्वास हो जाएगा, अगर किसी विदेशी व्यक्ति को बताया तो वो तो यही समझेगा इसके ऊपर कुछ एनिमेशन मूवी बनाना चाहिए, सुपर, उसके दिमाग में चलने वाला नहीं है कि भगवान कौन है या कुछ है ऐसे करके। तो और वही भगवान सर्वशक्तिमान है, ये कंसेप्ट उसको हरेनी वाला प्रैक्टिकली जो है। और इसके बाद में समुद्र है, उसका चरणिंग शुरू किया पूरा, एक तरफ देवता, और किसको मथनी बनाया, एक सर्प को, और उसके बाद में वो डूब गया, तो एक 80,000 योजन या मील जितना बड़ा कछुआ आया, उसकी पीठ में रख के चर्निंग चालू किया। ये समुद्र का भी कोई चर्निंग हो सकता है कभी? तो बिल्कुल, मतलब अगर देखा जाए तो अल्टीमेट माइथोलॉजी लगेगा उसमें। लेकिन यही प्रभुपाद कह रहे हैं, देवता और डीमन के अंदर यही अंतर है। दानव बोलेंगे माइथोलॉजी है, किसने देखा है क्षीर सागर, किसने देखा है मंदर पर्वत, किसने देखा है भगवान को, किसने देखा है गरुड़ को, वो सब ऐसे ही बोलेंगे, क्या प्रूफ है इसका, है ना। लेकिन जो भक्त होगा बोलेगा नहीं, देखो भगवान सर्वशक्तिमान है, और हमारी दृष्टि, हमारे सेंस परसेप्शन के बियॉन्ड भी सृष्टि है, हमारा सेंस बड़ा इतना लिमिटेड है। अब आप तो देख सकते हैं कि जहाँ सच में पीछे क्या है, लेकिन मैं नहीं देख सकता, मेरा 2 आंख आ गई है खाली, और यहाँ से पीछे घड़ी के पीछे क्या है आप में से कोई नहीं देख सकता, मैं देख सकता हूँ कि पीछे कौन खड़ा है, क्या हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे पीछे आंख नहीं है, तो हमारा सेंस इतना लिमिटेड है। 4 दोष हैं हर जीवात्मा के अंदर, और उसके बाद भी व्यक्ति जो चुनौती करता है कि अगर दिखाएंगे तो हम मानेंगे, है कि नहीं? तो वो होते हैं डीमंस, जो केवल, और इसके उस पर भी कोई मान जाए तो भी चलो देख सकता है, लेकिन डीमंस मतलब वो फिर भी कुछ ना कुछ तर्क ही करेंगे। जय श्री राधा राधिका भगवान, जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बल्ली सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर नारायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो उनका जो जो दानव हैं वो कभी भी इस बात पे विश्वास करेंगे नहीं कि सृष्टि के पीछे भगवान है या भगवान सर्वशक्तिमान है, ये सृष्टि भगवान ने बनाई है जो है, उनको लगेगा ये सब माइथोलॉजी है बस और कुछ नहीं। कई कई तो धार्मिक कथाकार भी ऐसा बोलते हैं कि हाँ ठीक है, ये सब वैदिक साहित्य, गीता, भागवत, रामकृष्ण सब माइथोलॉजी है, लेकिन क्योंकि हम अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छा व्यक्ति बनने में मदद करते हैं, तो हम इन्हें यूज करते हैं। वो भगवान है, ये सब उनको नहीं जो है इसकी शिक्षा नहीं देंगे कि भगवान है, सर्वशक्तिमान है, कृष्णा ओमनीपोटेंट, इज ओमनी प्रेजेंट, इज ओमनीशियंट, कि भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सर्वव्याप्त है, ये उनको इसकी शिक्षा नहीं देते। इसको बोलते हैं दानव। और ये जो अवसरवाद सिद्धांत है, हालांकि आप में से अधिकांश भक्त तो जानते होंगे, खासकर जो टेंपल में भक्त हैं, लेकिन एक बड़ा इजी सा उदाहरण है अवसरवाद, मतलब दिस क्रिएशन केम बाय चांस। जस्ट बिफोर दिस आई विल गिव वन फेमस स्टोरी, आप सबको मालूम होगा। एक बार एक ब्राह्मण था और एक बार एक मोची था। तो वो मोची को बड़ा विश्वास था, भगवान का भक्त था, लेकिन ब्राह्मण चाहे वेद पाठ में पंडित था, लेकिन उसको ज्यादा डाउट था, थियोरेटिकली सब रटा हुआ था, लेकिन उसको भगवान का विश्वास नहीं था। तो नारद मुनि एक बार जा रहे थे भगवान से मिलने के लिए, तो उस ब्राह्मण से बोला तुम्हें कुछ, तुम्हारे लिए कुछ पूछना है? तो बोला पूछिएगा भगवान से, नारायण से, कि मैं कब वैकुंठ लोक में आऊंगा। तो बोला ठीक है। तो जाते रहे, मोची से भी नारद मुनि मिले, बोले कि भगवान से मिलने जा रहा हूँ, कुछ पूछना है? बोले वैसे तो मुझे पता है मेरा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी आप पूछ लीजिएगा कि कभी उद्धार होने का कोई चांस है, जा सकता हूँ वैकुंठ में? तो फिर ठीक है। तो आपको सबको मालूम है भगवान ने बोला कि जो ब्राह्मण है उसका तो 1000 जन्म या 1,00,000 जन्म बाद में उद्धार होएगा, और मोची का इसी जन्म में वापिस आ जाएगा। तो नारद मुनि को भी तो डाउट आ गया, वो मोची चमड़े का काम कर रहा, जूता बनाता है, इधर ब्राह्मण इतना पूजा पाठ करता है। तो बोले नारद मुनि को डाउट आ गया, बोले भगवान कैसे समझा जाए इसे? तो बोले कि देखो तुम वहां पे लोग तुमसे ये दोनों पूछेंगे कि भगवान क्या कर रहे थे, उनको बताना भगवान क्या कर रहे थे, एक सुई की नोक में से हाथी को निकाल रहे थे, और फिर रिएक्शन देखना, तुमको समझ में आ जाएगा। तो नारद मुनि गए और ब्राह्मण के पास गए, तो ब्राह्मण को बोला देखो भगवान ने बोला तुम 1000 जन्म बाद वैकुंठ आओगे। उसको गुस्सा आ गया, क्या बात है, मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, ऐसा हो ही नहीं था, आप भगवान के पास गए ही नहीं। वो नारद मुनि पे आरोप करने लगा, आपने पूछा ही नहीं, या आप में से झूठ बोल रहे हो। अच्छा अगर आप गए थे बताइए भगवान क्या कर रहे थे? बोले भगवान एक सुई की नोक से, सुई के वो छेद से हाथी को निकाल रहे थे। बोला देखो ऐसा कभी हो सकता है, कोई सुई की जो छेद से किसी हाथी को भला निकाल सकता है? आप गए ही, आप खाली मजाक कर रहे हो मेरे साथ। और नारद मुनि को समझ में आया ऐसे किताबें तो बहुत पढ़ी है लेकिन विश्वास नहीं है। फिर उस मोची के पास गए, तो मोची ने बोला कि उसको भी लगा कि नारद मुनि फिर मजाक कर रहे हैं। बोले इसी जन्म में तुम भगवधाम आ जाओगे, भगवान ने बोला। बोले नारद मुनि आप क्यों ऐसा मजाक कर रहे हैं, मैं गरीब आदमी, आप क्यों मजाक कर रहे हैं मेरे साथ में? बोला नहीं नहीं, तो आपको मालूम है भगवान क्या कर रहे थे? तो बोले बताइए। बोले भगवान एक सुई की छेद से हाथी को निकाल रहे थे। तो तुरंत बोला हाँ देखिए मेरे भगवान कितने महान हैं, जो है कि वो सुई की नोक से छेद से हाथी तो क्या पूरे ब्रह्मांड को निकाल सकते हैं। तो नारद मुनि ने बोला ऐसे कैसे, ऐसा कोई हो सकता है क्या भला कि कोई सुई के छेद से हाथी को निकाल दे? तो बोला देखो, वो एक जिस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, बोला देखो ये इतना बड़ा विशाल पेड़ है और ये छोटा सा एक बीज, भगवान का पैकिंग देखिए आप, इतने बड़े पेड़ को छोटे से बीज के अंदर पैक करके भगवान ने रख दिया है कि नहीं? तो इसको धरती पर बोएंगे तो इतना बड़ा विशाल रूप करके ये जो वृक्ष निकल के आएगा, तो भगवान क्या नहीं कर सकते? भगवान के लिए तो जो करनीय है जो अकरणीय है दोनों करने भगवान योग्य है। तब नारद मुनि को समझ में आया कि ये क्यों भगवधाम जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ये श्रद्धा है। तो ये श्रद्धा होना जो है एक भक्त का देवताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और यही एक क्वालिफिकेशन है बेसिकली देवता और दानव के अंदर। तो ये ब्राह्मण और मोची के उदाहरण से एक चीज देखा। अभी अवसरवाद सिद्धांत क्या है? लोग बोलते हैं कि जो सृष्टि है ये एक बाय चांस आई है और एक बिग बैंग से आई है। तो साइंस के स्टूडेंट्स और सब पढ़ के आए हैं इसी कचड़े से, यही हमने अपने बचपन के अंदर पढ़ा है, और इससे सबका दिमाग खराब हो जाता है, एथिस्टिक फिलोसॉफी। अब बच्चे ये एथिस्टिक फिलोसॉफी है बिग बैंग वैसे, और फिर सुबह से बच्चे आते हैं भगवान के बाद, भगवान पेपर में पास करा देना, फिजिक्स के पेपर में बिग बैंग डार्विन थ्योरी के अंदर। ऐसे एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिग बैंग ठीक है कि महाविष्णु के पोर से सब ब्रह्मांड निकले, तो उस सेंस के अंदर तो ये ठीक है, लेकिन उनका क्या है कि ये बिग बैंग के पीछे कोई करने वाला नहीं है। तो क्या फिलोसॉफी है कि देखिए यहाँ कुछ कागज रखा था, थोड़ी स्याही पड़ी है, और जो है एक टेबल है, और थोड़ा गत्ता है, और एक बूम विस्फोट हुआ बहुत जोर से, तो क्या हुआ, पूरा एक डिक्शनरी, बहुत जो ऑर्गेनाइज एकदम फर्स्ट क्लास चेंबर्स डिक्शनरी जो है प्रकट हो गई। बताइए ऐसा अगर आपको कोई बोले आपको क्या लगेगा? बोले अच्छा मजाक है, है कि नहीं? बोले एक पेपर रखा है, इंक रखी है, और एक धमाका हुआ, किसी ने आरटीएक्स रख दिया और एक डिक्शनरी निकल के आ गई। कोई भी अगर बच्चे को भी बोलेगा, बोले क्या मजाक कर रहे हो, कोई सुबह सुबह मिला नहीं क्या मेरे साथ में जो आप मजाक कर रहे हो। लेकिन आप सोचिए, ये फिलोसॉफी को हम लोग सारे के सारे पढ़ पढ़ के डिग्रियां लेते हैं अपनी, है कि नहीं? सबने बचपन में पढ़ा 8th 9th या स्टैंडर्ड के अंदर कि ये सृष्टि के पहले क्या था, एक इनफाइनाइट सिंबल, छोटा सा, इनफाइनाइट डेंसिटी का, इनफाइनाइट टेम्परेचर का, और फिजिकली अनवेरीफाइबल, फिजिकली अनरियलाइजेबल, मैथमेटिकली अनवेरीफाइबल एक पॉइंट था। एक बड़ा जोर से धमाका हुआ और ये सारा का सारा ब्रह्मांड जो है वो धमाके से निकला है, बस सृष्टि हैपन। और इसको लेके लोग इस पर डॉक्टरेट्स कर रहे हैं, लोग पोस्ट डॉक्टरेट्स कर रहे हैं, और बाद में क्या हो रहा है, फिर कुछ नहीं, वो इसी पर रिसर्च करते रहेंगे। लेकिन तकियानु से फिलोसॉफी है अब देखा जाए, लेकिन इसको आज के डेट में साइंस बोला जाता है, इज नॉट साइंस, नहीं साइंस, या अज्ञानता है वास्तविकता के अंदर, कि कोई भी कॉमन सेंस से बोल सकता है। आप सोचिए कि रोहिणी मंदिर बनाने वाले जैसे केशव मुरारी को एक बम लेके आए और फोड़ दिया वहां पे, बोले रोहिणी मंदिर निर्माण हो गया। अगर ऐसा होता तो कितने भी बिल्डिंग बनाने के लिए कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी, कोई बिल्डर नहीं होता, सब धमाके कर रहे होते हैं कि नहीं? ऐसा कभी होता नहीं दुनिया के अंदर, हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ता कि धमाकों से क्रिएशन होता है। और फिर भी मान लिया जाए कि कहीं धमाका किया जाए तो प्रश्न ये उठता है, धमाके के पीछे कौन है, है ना? कहीं पे विस्फोट होता है, कहीं पे टेरिस अटैक होता है, तो सबसे सरकार पूछती है कौन सा गैंग आईसीस या ये जिसने, उसके बारे में जिम्मेदारी कौन ले रहा है उसका, है कि नहीं? तो ऐसा होता है किसी धमाके के पीछे कोई गैंग होता है, गैंगस्टर होते हैं जो धमाके करते हैं। लेकिन दानव लोग बोलेंगे नहीं, ये अपने आप ही हुए, और अलग अलग जो है टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। जब मैं 11th क्लास के पहला सेशन था, हमारे फिजिक्स टीचर आए थे, तो मुझे याद है, आई कोट दिस ऑफन, अच्छा जोक भी है और एक सच्चाई भी है। तो वो पहली क्लास के अंदर बोले, बहुत मजाकिया व्यक्ति थे वैसे, तो वो बोले कि देखो साइंस लिया था, पहला क्लास था फिजिक्स का, बोले अब आप फिजिक्स पढ़ने जा रहे हो, और मैं पहले बताता हूँ आपको कि फिजिक्स है क्या, कुछ कुछ ऐसे बताया उन्होंने। फिर बोले कि देखो जो फिजिक्स पढ़ते हैं फिजिसिस्ट और पंडितों के अंदर हमेशा से लड़ाई रहती है। बोले अच्छा, तो मैं चलो सुनते क्या लड़ाई है। वो लड़ाई ये है कि जो पंडित लोग होते हैं बोले सब कुछ भगवान से आया है, भगवान ने बनाया है सब। तो फिजिसिस्ट साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, ठीक है भगवान ने बनाया तो भगवान को दिखाओ। तो बोलते नहीं, वो तो हम नहीं दिखा सकते। पंडित लोग बोलते हैं उसमें आपको विश्वास रखना पड़ेगा। तो फिर पंडित लोग पूछते हैं ठीक है आप बताओ सृष्टि कहां से हुई। तो बोलते एटम से हुई। बोले एटम को दिखाओ। तो फिजिस्ट बोलते हैं वो हम नहीं दिखा सकते। तो दोनों का हमेशा वाद विवाद रहता है हमेशा फिजिसिस्ट से। तो आप हमारे ऊपर है, हम किसके ऊपर विश्वास करें, एक एटम के ऊपर या पूर्ण स्वतः भगवान के ऊपर? विश्वास तो हमें रखना ही पड़ेगा। जो साइंस स्टूडेंट हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ते थे उसमें, और एक और पढ़ते थे, कितनी बार तो उसका वैल्यू चेंज हो जाता था, हर 2-4 साल के अंदर उसका जो कॉन्स्टेंट है उसका वैल्यू चेंज होता रहता था बार बार। हैवी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और उसको कोई वेरीफाई भी नहीं कर सकता था, करता था रिसर्च, फिर भी सब विश्वास करते थे। तो विश्वास करना है तो हमारे ऊपर किस पे विश्वास करें, है कि नहीं? तो या तो पूर्ण प्रसन्न भगवान पे करें, विश्वास करेंगे तो जो है हम देवता बन सकते हैं और भगवान हमारी मदद करेंगे, नहीं तो जो है असुर दानव है, तो पुनर्पि जन्मम पुनरपि मरणम, और अलग अलग फिलोसफी निकालते रहेंगे और इंद्र तृप्ति के को ढकने के लिए खाली। क्योंकि अगर भगवान के अस्तित्व को कोई मान लेता है तो उसे इंद्र तृप्ति से जो है छुटका, ही इज अकाउंटेबल फॉर हिज डीड्स बेसिकली। तो इसीलिए जो ये असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, और ये ऐसा नहीं अभी से है, ये सृष्टि के प्रारंभ काल से, अभी भी देवता असुर भी अभी भी हैं, और ऐसा नहीं कि मॉडर्न टाइम ये थ्योरीज हैं, ये भी वैदिक समय से ही ये थ्योरीज हैं। जो षड दर्शन फिलोसॉफी हम जानते हैं, न्याय, वैशेषिका और कर्म मीमांसा इत्यादि, तो ये सब वैदिक एथिज्म है बेसिकली। ये वैदिक रूप से जो नास्तिकवाद को प्रोपोगेट करते हैं अलग अलग फिलोसॉफीज के थ्रू, अलग अलग चर्चाओं के थ्रू, तो जो है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो भगवान के सर्वशक्तिमता में पूर्ण विश्वास करते हैं। लेकिन जब भक्त और उन्नत स्तर पर चल जाता है, खासकर ब्रजवासी, तो उन्हें भी लगता है ये कहना इसके बस की थोड़ी है, इसने थोड़ी पर्वत उठाया, हमने भी लकड़ों से उठाया था, है कि नहीं? ये तो नंदा महाराज के चप्पल जूते भी नहीं उठा के ला सकता, तब बोलता है भारी है ये, थोड़ी गोवर्धन उठाएगा। जो उन्नत भक्त होता है वो प्रेम के वशीभूत जो है भगवान के, क्योंकि वृंदावन में गॉड हेड लूज इज गॉडहुड, यू नो द लव, द इंटीमेसी कवर द सुप्रीमेसी। लेकिन एक साधक, तो ये ब्रजवासियों का स्तर है। लेकिन हमें जो है भगवान के दिव्य शक्तियों का भगवद गीता से श्रीमद भागवतम से जो है समझने का प्रयास करना चाहिए। दो इनकंसीवेबल है वो। कृष्ण गीता में कह रहे पश्चिम योगम ऐश्वर मासा भक्त भक्ति शास्त्र का पेपर है, ये सब एनालॉजी हम लिखने वाले हैं तो जो है लेकिन कृष्ण की ये अचिंत्य शक्तियों का समझने का प्रयास करना चाहिए। चाहे कृष्ण बहुत सारे उदाहरण भी दे रहे हैं, हैं सारे क्रूड एग्जाम्पल चाहे, लेकिन फिर भी समझने का प्रयास करने से हमारा शुद्धिकरण होता है। जितना हम समझेंगे समझने का प्रयास करेंगे उसे भगवान प्रसन्न होंगे और अपने आप को प्रकाशित करेंगे, लेकिन भगवान की कृपा से। तो इसलिए भगवान को जानने के लिए सब भक्तों को प्रारंभिक अवस्था और जब तक कि प्रेम के स्तर पर नहीं आते इन लीलाओं को इन शक्तियों को सही प्रकार से समझने का प्रयास पूरा करना चाहिए और इनको अपने अपने आसपास सब जगह देखना चाहिए कि भगवान की शक्ति किस प्रकार से कार्य कर रही है। जन्माद्यस्यतः कि भगवान से सब जो है सृष्टि आती है, हर वस्तु भगवान से ही ओरिजिन है, उसका जन्म होता है निकलती है। और असुरगण यही व्याख्या करना श्रेष्ठ समझते हैं कि जगत की सारी घटनाएं अकस्मात से होती हैं, बाय चांस होती हैं, किंतु भक्तगण अथवा देवगण किसी भी घटना को अवसर जनित नहीं जानते हैं। वो मानते हैं इसके पीछे कोई क्रिएटर है, इसके पीछे कोई सृष्टि करता है, तो इसका हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। और यदि बाहर हमको बहुत सारे लोग मिलेंगे कि ये है वो है, उसका खंडन करना हमें अच्छे प्रकार से आना चाहिए और उनको पोलाइट वर्ड्स ऑफ लॉजिक जो है तर्क नम्रतापूर्वक तर्क के माध्यम से उन्हें भक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए सिद्धांत के द्वारा। जैसे कि अपने 47 सेशन के अंदर प्रारंभिक दिनों के अंदर ही भगवान की सर्वशक्तिमता का वर्णन करते हैं, खासकर पहले और दूसरे सेशन के अंदर कि किस प्रकार से भगवान सर्वशक्तिमान है, सुप्रीम क्रिएटर, सुप्रीम डिजाइनर एटसेट्रा। सृष्टि को पढ़ने मात्र से हम समझ सकते हैं इसके पीछे कोई सृष्टि करता है, केवल किसी या तो भौतिक रूप से जो माया आपृत ज्ञान है जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, ऐसे लोग भी बोलते हैं कि इसके पीछे कोई भगवान नहीं है। तो इस प्रकार से जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। तो ये आज वृंदावन दास ठाकुर का प्राकट्य दिवस है। तो वृंदावन दास ठाकुर जो है ये शेयर कर दीजिएगा आधे भक्तों की। तो वृंदावन दास ठाकुर श्री चैतन्य महा नित्यानंद प्रभु के अंतिम शिष्य बताए जाते हैं या मंत्र शिष्य, अंतिम मंत्र शिष्य बताए जाते हैं बेसिकली। और ये व्यासदेव के अवतार है। मोदाद्रुम द्वीप के अंदर जो भक्त नवदी मंडल परिक्रमा में जाते हैं तो वहां पे मामगाछी नामक जगह में उनका जन्म स्थान बताया जाता है या वहां पे वो रहा करते थे। आज भी उनके द्वारा जो द्वारा सेवित श्री गौर निताय हैं उनके विग्रहों की पूजा होती है। तो ये जो वृंदावन दास ठाकुर एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु के बारे में तीन मुख्य ग्रंथ हैं, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल। अच्छा जयपता का महाराज बता रहे थे कि उनके बारे में कम से कम 9 ग्रंथ टोटल हैं, मुरारी गुप्त के कर्चे और चैतन्य चंद्र नाटक इत्यादि जिसके द्वारा वो रिसर्च करते हैं, पर तीन ये प्रमुख हैं। तो चैतन्य चरितामृत लिखा कविराज कृष्णदास कविराज गोस्वामी, चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर और चैतन्य मंगल लोचन दास ठाकुर ने। तो सबसे पहले लिखा था ये ग्रंथ चैतन्य भागवत, जिसको पहले चैतन्य मंगल के नाम से उन्होंने लिखा था, बाद में लोचन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल करके एक और ग्रंथ लिखा था, उन्होंने नाम चेंज कर दिया चैतन्य भागवत। और इनके बाद में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये चैतन्य चरितामृत लिखा था। तो ये चैतन्य चरितामृत के अंदर कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनका जगह जगह पे गुणगान करते हैं, लेकिन जो उनका लॉन्गेस्ट गुणगान है ये आदि लीला 8वें अध्याय के अंदर वर्णित होता है। और जो है वहां पे चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत के बीच में जो संबंध है वो भी बताया है कविराज कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, कि वो उनका आशीर्वाद की याचना करते हुए और चैतन्य भागवत की महिमा, वृंदावन दास ठाकुर की महिमा, और बता रहे हैं कि चैतन्य भागवत में जो जो लीला चैतन्य वृंदावन ठाकुर ने लिखा है मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। तो ये सब आएगा, तो जितने 15 मिनट का डिस्क्रिप्शन करने का प्रयास करेंगे। तो ये चैतन्य चरितामृत के प्यारे आदि लीला 8वें अध्याय का 33वें से लेके आगे जितने भी श्लोक हैं। ओरे मूढ़ लोक सुना चैतन्य मंगल चैतन्य महिमायाते जाने वैसा काला। कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीला रव्यास वृंदावन दास, वृंदावन दास कैला चैतन्य मंगल, जहां श्रवण नाशे सर्व अमंगल, चैतन्य नीताय जाते जानिए महिमा, याते जाने कृष्ण भक्ति सिद्धांते रोसीमा, भागवते यत भक्ति सिद्धांते रसार, लिखियाछे नैना जानी करिया उद्धार, चैतन्य मंगल सुने जदि पाषंडियवान, सेह महावैष्णव हयताक्षण, मनुष्य रचित नारे ऐछे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य, वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, ऐछे ग्रंथ करीते हो तारीला संसार, तो आगे क्या आप खुद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो चैतन्य भागवत या चैतन्य मंगल का जो वर्णन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां से बोले कृष्णदास कविराज गोस्वामी, अरे मूर्खो, जरा श्री चैतन्य मंगल तो पढ़ो। इस ग्रंथ को पढ़कर तुम श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी महिमाओं को समझ सकते हो। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि बाद में इसका नाम चैतन्य भागवत कर दिया था। जिस तरह कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास, जिस तरह व्यासदेव ने श्रीमद भागवत में कृष्ण की सारी लीलाओं का संकलन किया है, उसी तरह ठाकुर वृंदावन दास ने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है। तो ये जो वृंदावन दास ठाकुर है व्यासदेव के अवतार हैं। ठाकुर वृंदावन दास ने श्री चैतन्य मंगल की रचना की, जिसके सुनने से सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, बहुत ही मधुर, भगवान की कृपा से लास्ट ईयर ही मैंने इसको पढ़ा था। तो ये सभी भक्तों को, भक्तानंद ठाकुर ने इसके बहुत सुंदर टीका भी लिखी है और वो गौड़ीय मठ में सबको प्रिस्क्राइब करते थे ग्रंथ को पढ़ने के लिए। शायद प्रभुपाद जी इस पर टीका देते, लेकिन प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत पहले लिखा, क्योंकि उसमें सिद्धांत ज्यादा है, इसमें लीला है और उसमें सिद्धांत है। और चैतन्य भागवत के बारे में भक्तिसनाथ ठाकुर ये लिख रहे हैं कि ये इस ग्रंथ की भाषा इतनी मधुर है कि ये वास्तविकता में गोलोक वृंदावन के रेजिडेंट्स की भाषा है जो वृंदावन ठाकुर ने लिखा। ऐसा उसके अंदर लिख रहे हैं कि गौड़ीय वैष्णव केवल गौड़ देश के रहने वाले नहीं है, लेकिन वो गोलोक वृंदावन गौड़ भाषा को बोलते हैं। तो बड़े सिंपल शब्द के अंदर, उन्होंने सिंपल बंगाली के अंदर वृंदावन ठाकुर ने लिखा। घर घर के अंदर प्रैक्टिकली बंगाल के अंदर चैतन्य भागवत पढ़ते, इतना से फेमस हो गया, क्योंकि हर गा गा सकता है, बच्चा भी इसको, गांव वाला व्यक्ति पढ़ सकता है। चैतन्य चरितामृत में तो फिर भी कॉम्प्लिकेट में संस्कृत श्लोक आएंगे, थोड़ा बयार है वगैरह ये वो, लेकिन चैतन्य भागवत तो बहुत सिंपल है, इसको पढ़ना और इत्यादि। लेकिन सिंपल है तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे मतलब इसके अंदर कुछ वेट नहीं है, नहीं, वो बता रहे हैं। चैतन्य निताय याते जानिए महिमा, याते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांत तेरो सीमा। श्री चैतन्य मंगल पढ़कर मनुष्य श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु की सारी महिमाओं के सत्य को समझ सकता है और भगवान कृष्ण के भक्ति के चरम निष्कर्ष तक पहुंच सकता है। जो हाईएस्ट गोल है कृष्ण भक्ति का, वो बड़ी आसानी से इसको पढ़ के समझ सकता है। प्रभुपाद बहुत बड़ा तात्पर्य लिख रहे हैं इसके अंदर, ये बताते हुए कि दो चुनौतियां हैं भागवत को करने के लिए। पहला तो ये है कि कुछ लोग जो पेशेवर कथाकार है, प्रोफेशनल रिसाइटर है, वो कहते हैं कि भागवत में कुछ नहीं है, कृष्ण की लास्तीला का वर्णन है, खाली वही वर्णन करते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो तो केवल 5 अध्याय में लिखा है, बाकी 10 अध्याय 18 श्लोक इतने सारे और हैं। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, 7 दिन के अंदर ही उसकी व्याख्या पूरी कर देते हैं भागवत के अंदर। बोले इतना महान ग्रंथ है कि इसके 1 श्लोक की महिमा आप व्याख्या करो 3 महीने कम पड़ जाएंगे। प्रभुपाद जी ऐसा कर रहे हैं, तो 3 महीने के अंदर, सॉरी 1 सप्ताह, 3 महीने में समाप्त नहीं हो सकता 1 श्लोक भी, क्योंकि भक्त ठाकुर ने पहले श्लोक के 3 महीने शायद बांग्लादेश में प्रवचन दिया था। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ठीक से व्याख्या करो तो 1 श्लोक के ऊपर, और ये 7 दिन के अंदर पूरी भागवतम 18 श्लोक समाप्त कर देते हैं, तो ये दूसरी चुनौती है। लेकिन वो बता रहे थे, इसलिए क्या होता है भागवत पढ़ने में कभी कभी लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं या दिग्भ्रमित हो जाते हैं कृष्ण के बारे में, किंतु श्रील वृंदावन दास ठाकुर की पुस्तक पढ़कर मनुष्य इस विज्ञान को सरलता से समझ सकता है। लिख रहे हैं कि ये वृंदावन ठाकुर की स्पेशल जो कंट्रीब्यूशन है। श्रील वृंदावन ठाकुर ने श्री चैतन्य मंगल जो बाद में श्री चैतन्य भागवत कहलाया में श्रीमद भागवत से प्रामाणिक उद्धरण देते हुए भक्ति के निष्कर्ष और सार प्रस्तुत किए हैं। फिर वो बोले इस ग्रंथ की महिमा, यदि बड़े से बड़ा नास्तिक भी चैतन्य भागवत को या चैतन्य मंगल को सुने तो वह तुरंत महान भक्त बन जाता है। मैं एक भक्त सीनियर डिवोटी के साथ में, वो भी संन्यास कैंडिडेट है, मेरे को कुछ समय उनके बारे में सुना था मैंने, और आप में से कई भक्त जानते भी होंगे, तो वो ट्रेवल भी करते थे, उनका से एक चैतन्य भागवत रहता था पूरा, और एक चैतन्य चलता में, तो ऑस्ट्रेलिया पर एक बुक के अंदर जो है चैतन्य भागवत पूरा ट्रांसलेशन। और जो ट्रेन में जाते थे वो कुछ नहीं, अपने आसपास जो भी लोग होते थे बोले देखो मैं कथा करने वाला हूँ आप सब बैठ जाओ आसपास में। शुरू कहाँ से करते थे, चैतन्य भागवत पढ़ना पूरा शुरू करते थे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। और उसके बाद मैंने देखा कई लोग बाद में हरे कृष्ण जप करना शुरू कर देते थे, कुछ नहीं पढ़ने के बाद में, उनको पता नहीं कौन चैतन्य है कौन नित्यानंद है क्या है, लेकिन वो पढ़ने के बाद में, वो इंग्लिश में था सारा, वो हिंदी में जैसी भाषा होती थी हिंदी मराठी वो उस हिसाब से बोल लेते थे, 2-3 भाषा जानते थे उसके हिसाब से बोलना शुरू कर देते पूरा का पूरा। अब बोलते थे आप बस बैठो सुनो, लोग बारी बारी में शिफ्ट करते जाते, थोड़ी देर कोई बैठता था सुनता था फिर चले जाता था, लेकिन फिर आते थे आराम से उनसे पूछते थे स्वामी जी कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रही कुछ करने, बोले हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, और कई लोग कर लेते थे ऐसे। तो ये बहुत ऐसा नहीं है कि खाली लिखने को किताब है, ये बहुत प्रैक्टिकल है। मैं वृंदावन दास ठाकुर के, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, उनके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति सभी पतित आत्माओं के उद्धार के लिए ऐसा ग्रंथ नहीं लिख सकता था। और ये किसके पुत्र थे, इनके पिताजी का ज्यादा वंशज का लिखा नहीं है। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर कह रहे हैं कि जानने की आवश्यकता भी नहीं है। और कह रहे दो कारण इनके प्रचलित है कि एक तो उनके पिताजी बहुत जब ये छोटे थे तभी उनका स्वर्गवास हो गया था, दूसरा बोला जाता है कि वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा को स्वीकार नहीं किए थे। तो इसलिए भगवान लोग कहते हैं कि इनके पैतृक वंशज का ज्यादा पता नहीं है, तो जानने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, कहीं वर्णन भी नहीं है। लेकिन इनका माता का वंश बहुत महान है। कैसे, किनके पुत्र है ये? नारायणी चैतन्य उच्चिष्ट भाजन तार घर पे जन्मिला श्रीदास वृंदावन। ये नारायणी के पुत्र, नारायणी देवी के, जो श्रीवास ठाकुर की भतीजी हैं। जब वो 4 साल की थी तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने महाप्रकाश लगे तो नारायणी को बोला नारायणी कृष्ण प्रेम में नाचो, और वो रो रो के बिल्कुल कृष्ण प्रेम में अष्टाध्यायी का प्रकट होने लगा और जोर जोर से हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और अश्रु बहने लगे। और उसके बाद जब वो छोटी थी तो उनको महाप्रभु का महाप्रसाद उनको प्राप्त होता था। तो इस प्रकार से, और वो पिछले जन्म के अंदर जो है किलिंबिका नाम की धात्री माता थी बेसिकली। तो इस प्रकार से तो उनके गर्भ से जन्म हुए वृंदावन दास ठाकुर। ओहा चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का कैसा ही अद्भुत वर्णन उन्होंने दिया है, तीनों लोकों में से जो भी सुनता है वह शुद्ध हो जाता है। हर एक से मेरा आग्रह है कि चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद द्वारा दी गई भक्ति विधियों को अपनाएं और इस तरह भौतिक संसार के दुखों से मुक्त होकर भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करें। श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल लिखा है, उसमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का पूरी तरह से विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने सर्वप्रथम संक्षेप में महाप्रभु की लीलाएं दी हैं और बाद में उनका विस्तार से वर्णन किया है। चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अनंत तथा अगाध हैं, अतएव इन सबका वर्णन करने से यह ग्रंथ विशालकाय बन गया है। उन्हें इसे इतना विस्तृत देखकर बाद में लगा कि उनमें से कुछ का वर्णन ठीक ठीक नहीं हो पाया है। उन्होंने नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का भाव में वर्णन किया किंतु चैतन्य महाप्रभु की अंत लीलाएं अन कही रह गई। जब वो लिख रहे देखा यह ग्रंथ तो बहुत बड़ा हो गया है, डिटेल में लिख रहे थे, और नित्यानंद के शिष्य इनके नित्यानंद का में इतनी श्रद्धा है तो बड़े बड़े चैप्टर लिखे नित्यानंद प्रभु के महिमा के बारे में। स्टार्टिंग में नित्यानंद प्रभु पहला अध्याय इतना प्रणाम कर नित्यानंद प्रभु को, नित्यानंद प्रभु की महिमा के बारे में जो पहला अध्याय है उसके अंदर ही आदि खंड के अंदर। और तो उनको लगा कि ये तो ग्रंथ पूरा नहीं हो पाएगा, तो अंत लीला उन्होंने बहुत ही संक्षेप में लिखा ही नहीं, प्रैक्टिकली सिर्फ भुवनेश्वर पूरी तक पहुंचे महाप्रभु तो वो सब लिखा, ज्यादा थोड़े बहुत और लीलाएं लिखे और छोड़ दिया। तो फिर कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि वृंदावन दास के जो वृंदावन के भक्त थे वो ये जानने को बड़े वो थे, उत्साहित थे। तो एक गोविंद देव जी के एक ब्राह्मण पंडित जी पुजारी ने मुझे आदेश दिया कि मैं अंत लीलाओं को लिखूं, तो उनके आशीर्वाद से मैंने जो है ये चैतन्य चरितामृत का रचना की है। और इसीलिए आप देखेंगे वृंदावन दास ठाकुर जो ग्रंथ है उसमें संन्यास लीला तक बहुत वर्णन है महाप्रभु का, पूरी पहुंचने तक डिटेल में वर्णन है, एकदम दंड भंग लीला का छोटा सा वर्णन है। चैतन्य चरितामृत को 20 पयार होंगे, उसमें 50-60 पयार है कम से कम चैतन्य भागवत के अंदर। और चैतन्य चरितामृत के अंदर 11 अध्याय 16 पहले आदि लीला में 16 अध्याय है, 11 में तो मंगलाचरण ही है, अगले 5 में सीधा महाप्रभु का जन्म होता है और संन्यास तक 5 अध्याय के अंदर। बोले क्योंकि ये लीला का वर्णन वृंदावन ठाकुर ने उसमें किया है तो आगे बढ़ो, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। तो ये लीला का एक पयार में 4 लीला, बोले सबका वर्णन आपको उस ग्रंथ में मिलेगा, रेफर दैट बुक। और मध्य लीला के अंदर ट्रैवलिंग का खूब वर्णन किया है, 5 खंड के अंदर 25 अध्याय, और प्रभुपाद ने खूब उसके ऊपर जो है फिलोसॉफी के ऊपर लिखा है। और फिर अंत्य लीला वृंदावन ठाकुर ने डिटेल में लिखा है, उसके अंदर 20 अध्याय है पूरा शिष्टाष्टम प्रयास इत्यादि। तो ये दोनों ग्रंथ के बारे में है। और जस्ट लास्ट 2 मिनट्स के अंदर वाई वेदव्यास हैड टू अपीयर एज वृंदावन दास ठाकुर, तो इसको सुनने को मिला था भक्तिपद भागवत महाराज से, तो बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रहे थे वो। तो महाराज बता रहे थे कि देखिए जब वेदव्यास के रूप में वो आए तो उनकी क्या पर्सनैलिटी होगी, सब ग्रंथ लिखने में पढ़ने के अंदर ग्रंथों को लिखने के अंदर बिजी होंगे पूरा, ऐसे आगे कलयुग के लोग एकदम इंटेलेक्चुअल व्यक्ति होंगे बिल्कुल, है कि नहीं, सोच रहे होंगे, मग्न होंगे, कैसे लोग इसको समझेंगे, उनकी मानसिकता क्या होगी, क्या लॉजिक लिखना है, क्या करना है कि नहीं। और भागवत ने स्टार्टिंग में पढ़ते हैं पूरा डिसाइपल्स बनाया, ग्रैंड डिसाइपल्स, वेद उपनिषद इत्यादि सब दे दिया, उसका विभाजन कर दिया, तो हाई क्लास इंटेलेक्ट होगा उनका, है कि नहीं। तो नॉर्मली फिलोसॉफर्स होते हैं जो इंटेलेक्चुअल स्कॉलर्स होते हैं उनके अंदर कोई ज्यादा रस विहीन होते हैं, दे ड्राई नॉर्मली, तो वो रस का आस्वादन जो है। और देखते भागवतम इत्यादि ग्रंथों की जो लैंग्वेज है वो बहुत रिफाइंड है, बहुत स्कॉलरली है, बहुत जेंटलमैनली है, लेकिन वो फिर वृंदावन ठाकुर बोले अरे सब लिख तो दिया मैंने लेकिन भगवान की भक्ति का रस आस्वादन तो मैंने किया ही नहीं, और संकीर्तन लीला में कैसे पार्टिसिपेट करूं, है कि नहीं। तो फिर और आई भी लेट के अंदर, महाप्रभु के अधिकांश पार्षद तो चले गए जब इन्होंने ग्रंथ लिखा है, ज्यादा तो फिर भी थोड़ा बहुत मिले ऐसे, तो संकीर्तन लीला में ये आए बृंदावन ठाकुर के रूप में। और यहाँ कैसी पर्सनैलिटी उनकी, अगर हम ग्रंथ से पढ़ सकते हैं क्या पर्सनैलिटी होगी, बिल्कुल एक्स्टैटिक, कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी चिल्ला रहे हैं, और तो कभी बोल रहे हैं कि सभी नास्तिक पाषंडी है, भक्तन ठाकुर भी और इनकी अन्य टीकाओं के अंदर भी ये सबसे प्रमुख बात की जाती है। आज से एक दो साल पहले मोहन बाबू आए थे तो उन्होंने भी इसी के ऊपर पूरा एक घंटे का लेक्चर दिया था, उन्हीं को कोट करते हुए कि मैं उनके सर पे लात मारता हूँ। ऐसा बोले एक नास्तिक और पाषंडियों के सर पे लात मारते हैं ऐसे कैसे, बोले भान विनाश कृपा है, उनके पद की धूली पड़ेगी तो सबको समझ आ जाएगा कि कृष्ण भगवान कौन है, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कौन है। तो उनके ग्रंथ के अंदर आप पढ़ेंगे तो देखेगा वो तो बिल्कुल फिलोसफी बहुत कम है, सिर्फ एक्सटेसी, यू नो, अब क्या भक्त मिल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, प्रसाद सेवन कर रहे हैं, और बिल्कुल तो ऐसे रसों का आस्वादन करने के लिए वो वेदव्यास जो कि ड्राई पर्सनैलिटी है बिल्कुल, मतलब ऐसे होंगे स्कॉलरली टाइप, वो वृंदावन सागर रूप में आते हैं और पूर्णतया रस को एकदम आस्वादन कर रहे हैं वो। और फिर महाप्रभु बोले देखो आप भक्ति भागवत मार्ग गए थे कि देखो आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मैं इस्कॉन में एक ही पर्सनालिटी को ऐसा सोच सकता हूँ जो वेद व्यास से थोड़ा सा सिमिलर हो सकता है, या उसका वो है हिज ओनली जय अद्वैत स्वामी महाराज। जो लोग जानते होंगे जयद्वैत महाराज को, महाराज सेवा सॉरी वन लाइनर स्कॉलरली पर्सनैलिटी। फिर उन्होंने बताया क्यों ऐसा, ये कहते कि एक बार सीनियर ब्रह्मचारी आश्रम में भक्तिवत भागवत महाराज जयद्वत महाराज दोनों साथ साथ कमरे में रुके थे, तो गैलरी में जब मिले तो भक्तिवत भागवत महाराज ने बोला कि महाराज आप थोड़ा कृष्ण लीला बताइए, कुछ कृष्ण के बाद कुछ कृष्ण कथा बताइए। वहां पर जयद्रथ महाराज ने बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो दिस इज माई कृष्ण कथा। तो महाराज बोले कि भक्ति भागवत महाराज कुछ और बताइए, तो जयद्रथ महाराज ने कोट निकाला, बोले प्रभुपाद से माई स्पिरिचुअल मास्टर गेव मी दिस इज द कृष्ण कथा, एक कहीं से कुछ कोट किया ये परपट ये वठक और दिस इज द कृष्ण कथा फॉर ऑल इस्कॉन डिवोटी, ऐसे करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्ति में भागवत कह रहे मैं उनसे कंपेयर करता हूँ वेदव्यास को तो कुछ हद तक, और उसके बाद में जो वृंदावन सागर है वो तो बिल्कुल एक्स्टैटिक पर्सनैलिटी, सबसे बड़ी चाहिए सचिनंदन महाराज या कोई और बिल्कुल जो है वृंदावन इस प्रकार से। तो वृंदावन सागर से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की हमें श्रद्धा जागृत हो और उनके ग्रंथ को हम पढ़ सकें, और जो है उनके इस कंट्रीब्यूशन को जो उनका गिफ्ट है, एक्चुअली भक्ति मीन्स जो पूर्ववर्ती आचार्य जो तोहफा हमको दिया, जो उपहार दिया है जिसके लिए हम बिल्कुल डिजर्व नहीं करते, उसको स्वीकार करना, उसको रिलिश करना और अन्यों के साथ शेयर करना। तो जब रिलिश करेंगे, शेयर करेंगे और अन्यों को बांटेंगे तो ये और बढ़ेगा और अधिक रिलिश कर पाएंगे, यही पंचतत्व का मूड है। और ये महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु के पंचतत्व की लीलाओं को पढ़ करके हम इसी मूड को अंगीकार कर सकें, उनके गहरी लीलाओं को समझ सके। समझना तो खैर जगह जगह लिखा है कि नहीं समझ सकते, चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत में असंख्य जगह लिखा होगा कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता, यहाँ तक ये लीला तो महाप्रभु के अंतरंग पार्षद भी नहीं समझ सकते। तो ऐसा भी लिख दिया चलो ठीक है, लेकिन तो हम रिलीज कर सकते हैं और उनकी कृपा की याचना कर सकते हैं, खासकर वृंदावन ठाकुर से। जय श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, ग्रंथरा श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि भागवत।